Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
आवरण को नष्ट कर देगा. इसलिए ज्ञान की विशेषता यह है, अपने विषय के साथ ज्ञान का कभी भी विरोध नहीं होता, तो उस विषय के जो आवरण है उसके साथ उसका विरोध होता है. इसलिए यहां देव शब्द प्रयोग किया है, देवतानाथ देव, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है. तुम्हारा ज्ञान का विषय भी क्या है? ज्ञान स्वरूप है. ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या हुआ? ज्ञान स्वरूप ब्रह्म. तभी जाकर फलव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान में प्रकाशता है. घट को प्रकाशित कौन करेगा? घट ज्ञान. समझ गए कि नहीं? घट को प्रकाशित कौन करेगा? घट ज्ञान. घट अज्ञान को प्रकाशित कौन करेगा? घट अज्ञान का ज्ञान. घट अज्ञान का ज्ञान किसको प्रकाशित करेगा? घट अज्ञान को प्रकाशित करेगा. तो ये निश्चित है कि ज्ञान में प्रकाश है. कौन सा प्रकाश है? अपने विषय को प्रकाशित करने की क्षमता ज्ञान में है. उस ज्ञान का विषय घट है तो घट को प्रकाशित करेगा. ज्ञान का विषय घट का अज्ञान है तो अज्ञान को प्रकाशित करेगा. प्रकाशित करना ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है. उस प्रकाश को लेकर यहां देव शब्द प्रयोग किया. बोलो, ब्रह्म को नहीं जानना कौन नहीं जान रहा है? मैं नहीं जान रहा हूं. तुम अपने को जान रहे हो कि नहीं? बोले मैं अपने को नहीं जानता. अच्छा, अपने को नहीं जानने को जानते हो कि नहीं? बोले जानता हूं. किसने प्रकाशित किया? इसलिए वो देवता यहीं बैठा है. वो देवता कहां बैठा है? आत्मा को न जानने को जानने वाला देवता कहां बैठा है? यहीं बैठा है. उसने विरोध नहीं किया. तो उसी में फिर विशेष और सामान्य की बात डॉक्टर साहब ने जो कही है वहां जुड़ जाता है. और यहां सामान्य विशेष की बात नहीं है. ज्ञान का विषय क्या होता है इस पर निर्भर करता है. इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है ना, ब्रह्माकार वृत्ति. ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को विषय करेगी. हाँ, ये ध्यान रखना, ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को विषय करेगी. ब्रह्म को विषय करते ही ब्रह्म का ज्ञान को नष्ट कर देगी. समझ रहे ना? तो ब्रह्म को विषय करने के कारण ही तो ब्रह्म का अज्ञान को नष्ट करेगा. ब्रह्म के अज्ञान को विषय करेगी तो नष्ट नहीं करेगा. ब्रह्म को प्रकाश माने अज्ञान को प्रकाशित कर देगी. तो अभी तक क्या हो रहा है? हमारे अंतकरण की वृत्ति ब्रह्म को विषय कर रही है कि ब्रह्म के अज्ञान को विषय कर रही है? अज्ञान को विषय करने के कारण ब्रह्म अज्ञान प्रकाशित हो रहा है. ब्रह्म प्रकाशित नहीं हो रहा है. जब तुम्हारी वृत्ति ब्रह्म को विषय करेगी तो ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा. ये देख लो, ये दोनों एक ही साथ होंगे. तब फिर तुम ये कैसे कहते हो कि ब्रह्म निर्विषय है? ये क्यों कहते हो? वृत्ति का विषय होगा तो फिर सविषय हो गया, निर्विषय कैसे होगा? तो रहस्य यह है, सविषय वहां कहलाता है जहां वृत्ति अपने विषय को प्रकाशित करके वृत्ति सुरक्षित अंतकरण में प्रत्यावर्तित होती है. तब तो उसको उसका विषय माना जाएगा. और यदि वह वृत्ति प्रत्यावर्तित नहीं होती है, वापस नहीं आती है, तो फिर वह विषय नहीं कहलाएगा. ये तो ब्रह्म के आवरण को नष्ट करने पर, ब्रह्माकार वृत्ति आवरण को नष्ट करने पर वो खुद भी नष्ट हो जाती, प्रत्यावर्तित नहीं होती है. तो इसीलिए उसको ब्रह्म को विषय नहीं कह पाएगा. लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति तो होगा, वृत्ति का विषय तो बनेगा ब्रह्म। यदि ब्रह्मा वृत्ति का विषय नहीं बना तो ब्रह्म से भिन्न अविद्या का विरोध वृत्ति कर ही नहीं पाएगा। यदि ब्रह्म का विषय नहीं बना, वृत्ति का विषय नहीं बना, तो फिर वृत्ति का विषय ब्रह्म से भिन्न किसी और को बनाना पड़ेगा, और ब्रह्म से भिन्न किसी और को वृत्ति बनाएंगे, विषय बनाएंगे, तो उससे वही प्रकाशित होगा। ब्रह्म तो प्रकाशित होगा नहीं। घटाकार वृत्ति से घट प्रकाशित होगा कि पट प्रकाशित होगा? अब ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म प्रकाशित होगा कि ब्रह्म भिन्न कोई और पदार्थ प्रकाशित होगा? ब्रह्म भिन्न कोई और पदार्थ प्रकाशित हो गया तो फिर ब्रह्म भिन्न तो वही अविद्या है या अविद्या के कार्य है, तो फिर प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? फिर तो तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति तो मानना ही पड़ेगा। इतना ही है कि ब्रह्म को इस अर्थ में विषय नहीं कहा जाएगा कि वो वृत्ति सुरक्षित न रह पाती है। वृत्ति सुरक्षित रह पाई तो विषय बन गया। सुनो सुनो, ब्रह्माकार वृत्ति जब भी बनती है वो ब्रह्माकार वृत्ति, आप जो कह रहे हो ना, ये विरोधाभास हो रहा है। ब्रह्माकार वृत्ति होती है और बोध नहीं रहता, ये जो कह रहे हो ना, ये विरोधाभास होता है। इसका मतलब ब्रह्म अपरोक्ष नहीं हो रहा। जो तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति है वो अपरोक्ष वृत्ति नहीं है, परोक्ष वृत्ति। क्योंकि परोक्ष वृत्ति लौटकर आ सकती है, अपरोक्ष वृत्ति तो लौटने का सवाल ही नहीं है। एक बार अपरोक्षाकार ब्रह्माकार वृत्ति अपरोक्ष हो गई, ब्रह्म एक बार अपरोक्ष हो गया, फिर उसके बाद वो वृत्ति बची रहे तो वृत्ति की मजाल है, हिम्मत है, रहेगी नहीं तो वापस कहां से आना है। इसीलिए तो कहते हैं तब है ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है। ब्रह्माकार परोक्ष वृत्ति होगी, अपरोक्ष वृत्ति नहीं होगी। ये आपको थोड़ा यहां डिफरेंस करना पड़ेगा। साधना अवस्था में साधक की ब्रह्माकार वृत्ति होती है, लेकिन वो ब्रह्माकार वृत्ति परोक्ष ब्रह्माकार वृत्ति होगी, अपरोक्ष ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी। तो परोक्ष ब्रह्माकार वृत्ति तो लौटकर आ सकती है, और वो ब्रह्मा परोक्ष ब्रह्माकार वृत्ति जिस दिन अपरोक्ष ब्रह्माकार में परिणत हो गई, फिर उसके लौट के आने का हिम्मत नहीं है, तड़ी पार हो जाएगी। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, फिर वृत्ति रहा नहीं तो इसलिए तो लौट कर नहीं आती है, इसलिए तो वो विषय नहीं बन पाता ब्रह्म। बात तो वही बात आ रही है ना, हम कही वही रहे हैं, अज्ञान का कार्य है। अब वो अज्ञान नष्ट हो गया, फिर वृत्ति कहां से बचेगी? मिट्टी नष्ट हो गया, घट कहां से बचेगा? फल व्याप्ति की तो जरूरत ही नहीं, प्रकाश, इसलिए तो देव शब्द कह दिया है ना। फल व्याप्ति का नाम है फल माने देव। प्रकाश तो वहां जरूरत पड़ता है जहां विषय विषय में प्रकाश नहीं है। जहां विषय में, ज्ञान का विषय में यदि प्रकाश नहीं है, तब उसको प्रकाशित करने के लिए फल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फल में प्रकाशित है, प्रकाश है, विषय में प्रकाश नहीं है। तब जिस विषय में प्रकाश नहीं है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाश लेके जाना पड़ता है, समझ गया कि नहीं? और जिस विषय में खुद ही प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए फिर प्रकाश लेके जाना पड़ेगा? नहीं है। हाँ, इसलिए फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति का अंतर इतना ही है। क्योंकि ब्रह्म तुम्हारा ज्ञान का विषय बनेगा तो ब्रह्म में स्वतः ही प्रकाश होने के कारण उस प्रकाश, ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए फल लेकर जाने की जरूरत नहीं है ना, दूसरा प्रकाश लेकर जाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे सूर्य को देखने के लिए पंचदशी में बहुत सुंदर किया, क्योंकि दीपक से अन्य पदार्थों को जानने के लिए दीपक की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए कि नहीं? दीपक से भिन्न प्रकार पदार्थों को जानने के लिए दीपक की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है ना। अब खुद दीपक की रोशनी को दीपक को जानना होगा तो क्या दीपकांतर की रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी? ये इसी तरह घटपट आदि पदार्थों को जानने के लिए तो फल व्याप्ति की आवश्यकता है, लेकिन खुद ब्रह्म को जानने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता, क्योंकि ब्रह्म में तो स्वतः ही प्रकाश है ना, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होगा, दीपक अपने प्रकाश से प्रकाशित होगा, न कि दीपकांतर के प्रकाश से प्रकाशित है ना, दूसरे दिए के प्रकाश से प्रकाशित होगी, अपने प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए वहां जहां वस्तु ज्ञान का विषय स्वयं प्रकाश है, वहां पर प्रकाश फल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीपक से प्रकाश से घटपट आदि प्रकाशित होंगे तो वह फल कहलाएगा, दीपक जिस प्रकाश से प्रकाशित होगी वह फल नहीं कहलाएगा। वृत्ति में आरूढ़ जो चिदाभास है, वस्तु को प्रकाशित वृत्ति करेगी कि वृत्ति आरूढ़ चिदाभास करेगा? यही तो। अन्य जो विषय होंगे घटपट आदि जो विषय होंगे वहां वृत्ति जाएगी, वृत्ति के साथ साथ फल भी जाएगा, समझ रहे ना? हाँ, अभी तक तुम नहीं समझ रहे हो। चिदाभास का नाम ही कौन सी चिदाभास? वृत्ति में आरूढ़ न कि अंतकरण का। अंतकरण का चिदाभास फल नहीं है, वृत्ति में आरूढ़ वृत्तियारूढ़ चिदाभास उसको कहते हैं फल, क्योंकि घट को प्रकाशित करने वाला तो चिदाभास है ना, उसी में वो रोशनी है, वृत्ति में तो रोशनी है ही नहीं, वृत्ति तो जड़ है, जड़ में तो प्रकाश होता ही नहीं। चिदाभास होने पर भी, चैतन्य का आभास होने पर भी उसमें प्रकाश है, इसलिए वो घट को प्रकाशित करने का। अब घट को प्रकाशित करने के बाद घटाकार वृत्ति वापस आती है, नष्ट नहीं होती है, वृत्ति आई तो फल भी आ जाएगा, उसको प्रकाश करने के बाद फल आ जाएगा। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति होकर ब्रह्म को विषय करते ही वृत्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए वहां फल नहीं होता है। हाँ ठीक, हाँ हाँ, वृत्ति सुनो ये ना 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 वो फल व्याप्ति नहीं है, घटम अहम जानामि वो फल व्याप्ति नहीं है। वो क्या है देखो, ये प्रक्रिया घट के आवरण को नष्ट करने मात्र से वृत्ति नष्ट नहीं होती है, ब्रह्म के आवरण नष्ट करने पर ही वृत्ति नष्ट होगी, समझ गए कि नहीं? अब जो अंतकरण से वृत्ति गई थी, घट को आवरण नष्ट करने के बाद वो वृत्ति कहां रही, उसका हिसाब बताओ हमको, वापस आएगी। हाँ, और उस वृत्ति के साथ गया हुआ जो चिदाभास फल है, घट को प्रकाशित करने के बाद कहां रहेगा? ये इसीलिए उसको फल व्याप्ति कहेंगे, दोनों की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद ब्रह्म को प्रकाशित करने पर, यानी ब्रह्म को प्रकाशित की बात छोड़ दो, ब्रह्माकार वृत्ति बनने पर ब्रह्म के आवरण को नष्ट करने के बाद वो वृत्ति कहां जाएगी? ये क्योंकि मूलाविद्या है, वृत्ति का मूल है मूलाविद्या, उसका उपादान कारण नष्ट हो गया तो वृत्ति कहां से बची रहेगी, इसलिए वो भी नष्ट हो गई। और तुम्हारे अंतकरण की वृत्ति का उपादान घट का अज्ञान नहीं है, अंतकरण का उपादान कारण घट का अज्ञान नहीं, ब्रह्म का अज्ञान है। तो घट का अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्म अज्ञान नष्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो वृत्ति सुरक्षित है, उपादान कारण सुरक्षित है, तो कार्य भी सुरक्षित है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान अतिरिक्त अन्य ज्ञान में वृत्ति नष्ट नहीं होती, वृत्ति फिर वापस आती है, वृत्ति वापस आई तो वृत्ति में साथ गया हुआ जो फल है वो भी वापस आएगा, तब उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका ज्ञान। हाँ, ज्ञान का जो वापस जो आ गया वो व्यवसाय, और ज्ञान का जो ज्ञान है वो प्रतिविज्ञा है। फिर ना 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 ना, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। एक शब्द और आ रहा है वो हमको अभी आ रहा है, ज्ञान घट को जानने के बाद जो ज्ञान आ गया उसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया है, वो प्रत्यभिज्ञा भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है ना, ना ना, एक शब्द और प्रयोग है, ख्याल जब आएगा हम बता देंगे। तो देव शब्द पर आज इतना डिस्कशन हो रहा है, देव देव माने स्वयं प्रकाश चंद्रग्रहण, ज्ञात्वा देवम, देखो चंद्रमा का प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है कि नहीं, तब फिर सूर्य में ग्रहण कैसे लगेगा? देखो सूर्य के प्रकाश का विषय यदि घटपट होगा तब घट का ज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा, समझ रहे ना, और सूर्य का प्रकाश का विषय खुद ही अंधकार होगा, चंद्र जैसे सूर्य ग्रहण में उस समय सूर्य का प्रकाश का विषय क्या होगा? ग्रहण। तो सूर्य के प्रकाश का विषय ग्रहण होने के कारण ग्रहण तो प्रकाशित हो गया, अन्य विषय प्रकाशित नहीं हुआ, यही तो फॉर्मूला सब जगह लागू होता है, नहीं तो ग्रहण किससे प्रकाशित होता है? ये घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मार्गम, अपना जो विषय प्रकाश का एक नियम है, प्रकाश का एक नियम होता है अपने विषय का विरोध नहीं करता, चाहे दीपक का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, फिर किसका विरोध करता है? तो उसके आवरण का विरोध करता है। तो प्रतिज्ञा क्या है? इदानिम तद्विदः तद्ध्यायिनश्च तद्ज्ञान ध्यान कृतम फलभेदम दर्शयति। तो ध्यान का फल क्या है और ज्ञान का फल क्या है, ये अलग अलग फल होने के कारण तद भेद दर्शयति, उसको अलग अलग करके बताया जा रहा है। पहले के दो लाइन के द्वारा ज्ञान के फल का निरूपण किया और दूसरे के दो लाइन से ध्यान के फल का निरूपण कर रहे हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणहि क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि। क्योंकि देवं ज्ञात्वा क्षीणहि क्लेशैर, क्लेश पंचक्लेश पतंजलि के सूत्र के साथ यह संबंध रखना, तो पांच क्लेशों में से पहला क्लेश क्या है? अविद्या। तो ज्ञात्वा देवं, उसको देव को जानते ही नष्ट क्या होगा? पांच क्लेशों में से पहला क्लेश ही नष्ट हो जाएगा। पहला क्लेश क्या है? अविद्या। और अविद्या रूपी पहला क्लेश नष्ट हो गया, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और उन्हीं पहले क्लेश से पैदा होने वाले जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब उन्हीं के कच्चे बच्चे हैं। किसके? पहले क्लेश के बच्चे कच्चे हैं ये, तो वो जब उपादान कारण ही नष्ट हो गए तो और कहां से रहेगा? इसलिए वो ही जन्म मृत्यु आदि ही पास हैं, उसी में जीवात्मा बना रहता है, क्योंकि जब पहला क्लेश नष्ट हो गया तो उस तत्जन्य जितने भी बंधन थे वो भी सब बंधन नष्ट हो जाएंगे। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशैः पहाणि क्षण ही क्लेशर जन्म मृत्यु प्रहारण, ये होगा ज्ञान का फल। समझ गए? अब ध्यान का फल क्या है, ब्रह्म ध्यान का फल क्या है? पहले भी उपासना की बात चली है, यहां ध्यान शब्द का अर्थ उपासना लेना। हाँ, तस्याविध्यानात्, तस्य अविधानात्, अविध्यानात्, तस्य ज्ञानात्, तस्य अविध्यानात्, उससे ज्ञान से सर्वपाश माने क्लेश का निवृत्ति, और तस्य अविध्यानात् तृतीयम देहभेदे, देहभेदे शरीर मरने के बाद यानी शरीर नष्ट होने के बाद वह तृतीय की अवस्था की प्राप्ति होगी। और तृतीय अवस्था क्या है? तृतीय अवस्था के तूर्य, तूर्य का अर्थ होता है चार, तूर्य माने चार, वन टू थ्री तूर्य, ले अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलोगे, वन टू थ्री फोर बोलते हो ना, हम क्या बोलेंगे, एक दो तीन चार, इसीलिए प्रथम द्वितीय तृतीय तूर्य, तूर्य माने अवस्था का नाम, संख्या का नाम, ये संख्या पूर्ति, चौथी संख्या पूर्ति के लिए तूर्य शब्द प्रयोग किया गया है। तस्याभिध्यान तृतीयम देहभेदे तृतीयम, जो तीसरा जो अवस्था है वह विश्वैश्वर्यम केवल आप्तकाम, जागृत यानी विराट, विराट क्या है, प्रथम अवस्था, और हिरण्यगर्भ दूसरी अवस्था, और तृतीय ईश्वर, तृतीयम तृतीय अवस्था की प्राप्ति होगी, कौन, ध्याना ब्रह्मध्यायी मरने के बाद ईश्वर की भूमिका में पहुंच जाएगा, थर्ड स्टेट कौन है वो, तृतीय ईश्वर, ईश्वर के लिए क्या कहा गया, विश्वैश्वर्यम, विश्वैश्वर्य है केवल आप्तकाम, तो वह ईश्वर कोटि में जाएगा। इसकी व्याख्या अब भाष्य में बड़ा क्लियर होगा, क्रम मुक्ति, हाँ देह भेदे, शरीर के नष्ट होते ही वह प्रथम विराट में भी नहीं रहेगा, द्वितीय हिरण्य गर्भ में भी नहीं रहेगा, तृतीय ईश्वर में जाएगा, यानी सप्रपंच ब्रह्म, जिसकी चर्चा पहले आ गया, सप्रपंच ब्रह्म यानी ईश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।